तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो, ये तीन बिंदु मत बिसरो मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो।
ओम शांति। जनवरी मास तपस्या का मास है। हमें बार बार बाबा सामने आते हैं। इस मास में बाबा ने अपनी संपूर्ण अव्यक्त कर्मातीत स्थिति प्राप्त की थी, तो इस मास में संपूर्णता के वाइब्रेशंस हैं। स्वतः वो स्मृतियां मन में ताजी होती हैं। देश विदेश में जहां भी बाबा के बच्चे हैं, सेंटर्स हैं, सारे वर्ष में यही मास है जो हर स्थान पर तपस्या चलती है। और वर्ष के आरंभ का ये प्रथम मास है जो प्रतिवर्ष हमें याद कराता है कि हमें भी बाप समान संपूर्ण बनना है। तो स्वयं की ऊंची स्थिति बनाने के प्रति हमारा अटेंशन जाता है। और जब चारों ओर बाबा के बच्चे तपस्या करते हैं तो उनके शक्तिशाली वाइब्रेशंस भी हमें योग में एकाग्र होने में मदद करते हैं। इसलिए इस मास में तपस्या करना सहज है। आज भी बाबा ने साकार मुरली में भी सुबह यही कहा हम सबको कि तुम्हें बाप को याद करने की खूब मेहनत करनी है, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। और मैं समझती हूं कि हम सब बाबा के बच्चे भी ये महसूस करते हैं कि अब इस मुख्य योग तपस्या के सब्जेक्ट पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। ज्ञान अब हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट है। आज से कुछ वर्षों पूर्व ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब हम देखते हैं कि बाबा का ज्ञान सत्य है, सर्वोच्च है। ये लॉजिकली विवेक पूर्ण तरीके से हम समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, सेवा भी अब बहुत सहज है। अब पहले जैसी मेहनत नहीं है, सामने से सेवाएं आ रही है। ब्राह्मण जीवन की जो बेसिक धारणाएं हैं, जो सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, उनको नियम मर्यादाएं भी नेचुरल है, मेहनत की बात नहीं है। अब हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है योग तपस्या के प्रति, क्योंकि बाबा की याद हमें अंतर्मुखी बनाती है, इंद्रियों पर संयम आता है, हमारा विल पावर विकसित होता है। जिसके आधार से हम अपनी ऊंची स्थिति में स्थायी रूप से एक रस स्थित रह सकेंगे। तो ये बहुत सुंदर मौका है मधुबन के पावन घर में बेहद संगठन के साथ तपस्या करना। तो अभी हम सब 7 बजे तक योग तपस्या करेंगे। काफी स्थान है हमारे पास, थोड़ा खुला खुला बैठ जाएं ताकि आराम से आप अभ्यास कर सके। पीछे खिसक सकते हैं, थोड़ा खुला खुला बैठ जाएं। संध्या का समय वैसे भी तपस्या के लिए उत्तम समय है। हरेक को अपने स्थान पर बैठे बैठे ही घूमना है। जैसे जैसे मैं यहां से आपको इस प्रकार से सिग्नल दूंगी तो आपको राइट साइड घूमते जाना है। पहले एक स्थिति का अभ्यास, फिर मैं ऐसे करूंगी, फिर दूसरी स्थिति, फिर तीसरी स्थिति, फिर चौथी स्थिति, ऐसे राइट साइड घूमते जाना है। इसलिए एक दो से खुले खुले अलग अलग बैठिए। विषय मुझे दिया है तीन बिंदियों का तिलक। पहला अभ्यास स्व में स्थित हो जाना। मन को समेट ले। अंतर्मन की गहराई में चले जाएं। मस्तक में निराकार आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाए। मस्तक के ऊंचे तख्त पर विराजमान मैं चैतन्य चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। शरीर तत्वों से बना है। जड़ है। मैं चेतन शक्ति बिंदु ज्योति आत्मा हूं। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। मैं आत्मा सत्य और चैतन्य हो। अविनाशी शाश्वत हूं। अपने असली स्वरूप में मैं शुद्ध पवित्र हूं। मैं शांत और स्थिर हूं। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की राजा इस शरीर की मालिका हूं। तो जीवन है, मैं इस शरीर से निकल जाऊं तो जीवन समाप्त हो जाता है। मैं आत्मा ही करता हूं, मैं आत्मा ही भोगता हूं। शरीर केवल एक साधन है, मैं आत्मा करावन हार शरीर करना हार है। मुझ आत्मा में ही विचार है, भावनाएं हैं, योजनाएं हैं, मैं वो चेतन शक्ति हूँ जिसमें अपार संभावनाएं हैं। जब मैं स्वामी स्थित हूँ तो मेरी शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियाँ सही कार्य करती है। मुझे स्वामी स्थित होने की आवश्यकता है। स्वामी स्थित रहते हुए साइलेंस में राइट साइड घूम जाइए। स्वामी अपने ही चेतन स्वरूप में एकाग्र हूँ। जीवन का ये प्रथम पाठ है। मैंने अपने आप को सही रूप से जान लिया है, पहचान लिया है। प्रथम बिंदी आत्मस्मृति का तिलक आत्म स्मृति का तिलक लगते ही जीवन अलौकिक बन गया। शरीर लौकिक है, मैं आत्मा अलौकिक हूं। जैसे ही मैं देहभान से डिटैच होती हूँ, आत्म स्वरूप में स्थित होती हूँ, मैं दुनिया के तमाम आकर्षणों से मुक्त हो जाती हूँ। मैं अलग हूँ, संसार अलग है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति या पदार्थ मुझे खींच नहीं सकता है। मैं अपने अविनाशी आत्म सम्मान में स्थित खो जाओ अपने न्यारे प्यारे आत्म स्वरूप में। मुझे अपने आप में ही आनंद है। स्वयं के प्रति एकाग्र, ज्योति हूँ, चेतन शक्ति हूँ, ये आत्मभाव जीवन की सभी हदों से मुझे ऊपर कर देती है। मेरी नजर में कोई भेद नहीं है, हम सब आत्माएं हैं। एक ही परम धाम के निवासी एक ही पिता के बच्चे सारा विश्व परिवार है। राइट साइड घूम जाइए, जैसे ही मैं सुबह में स्थित होती हूँ मेरा स्वाभाविक अटेंशन उस परम ज्योति के प्रति जाता है। जो मेरी स्मृति को मेरी स्थिति को ऊंची बनाता है। मेरे अति प्रिय अविनाशी पिता परम ज्योति शिव बाबा मैं बिंदु वो परम बिंदु मैं चेतन ज्योति वो परम ज्योति मैं मन की आंख से उस परम ज्योति बिंदु को देख रही हूं। मेरे अविनाशी पिता सुखदाता सदा पावन सर्वशक्तिमान मेरा सर्वस्व जैसे ही परम बिंदु शिव बाबा से मैं जुड़ती हूं, मैं भरपूर हो जाती हूं। मैं याद करती हूं और मुझे प्राप्ति हो जाती है। प्यारे शिव बाबा, मैं याद करती हूं और आप मेरे साथ हो जाते हैं। मैं आपके छत्र छाया में सुरक्षित हूं। आपका बनना और मेरा निर्भय निश्चिंत हो जाना याद से जो अपार सुख मिलता है, वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। याद के अतिंद्रिय आनंद में मैं मग्न हूँ। आपने मुझे अपना बनाकर कितना ऊंचा उठा लिया है। मुझे जीवन में और कोई इच्छाएं नहीं है। मेरे हर संकल्प आप स्वयं कर देते हैं। मैं आपको याद करती हूँ और सर्व प्राप्तियां हासिल हो जाती है। अब मुझे मन से या तन से भटकने की आवश्यकता नहीं। मेरे सर्व संबंध आपसे हैं, मेरी सर्व प्राप्तियां आपसे। राइट साइड घूम जाइए। आप आपकी ये संसार रचना मुझे सुखमय भासती है। कितना एक्यूरेट कल्याणकारी ये विश्व नाटक है। इस वर्ल्ड ड्रामा में मेरा हीरो पार्ट है, क्योंकि मैं आपसे जुड़ी हूं। अब जीवन की हर परिस्थिति, ड्रामा के हर सीन को मैं समझ सकती हूं। जीवन और जगत के सभी राज मैंने समझ लिए हैं। हर युग में मेरा सर्वोत्तम स्वरूप आदि में मेरा देव स्वरूप मध्य में मेरा पूज्य और पूर्वज स्वरूप और संगम का ये पवित्र योगी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण स्वरूप अब मुझे बनना है बाप समान फरिश्ता। डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप वतन वासी बाप के साथ मैं वतन वासी फरिश्ता सर्व बंधनों से सर्व बोझ से मुक्त वतन से ही बाप दादा के संग विश्व को देख रही हूं। जो प्यार, जो शक्ति मुझे बाबा से प्राप्त है, मैं विश्व की आत्माओं को दे रही हूं।
ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तपने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तपने तुम्हारी, भूल नहीं पाएंगे पालना सरकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना सरकार की, आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
शांति। बाबा के सत्य ज्ञान का सार इन तीन बिंदियों के तिलक में आ जाता है। हमारा अलौकिक जन्म इन तीन बिंदियों के तिलक से आता है। और यही ज्ञान के मूल तीन सत्य अगर हम अपने जीवन में उपयोग में लाते हैं तो हमारा बाप समान बनते जाना सहज हो जाता है। बाबा ने हम बच्चों को ये लक्ष्य दिया है और हम सब ने भी दिल से इस लक्ष्य को स्वीकार भी किया है, क्योंकि हम बन तब सकते हैं जब हम स्वयं बनना चाहते हों। सारी दुनिया बनाने का प्रयास करें लेकिन अगर मेरी अपनी इच्छा नहीं है तो नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर मेरी अपनी ये तीव्र इच्छा है, ये दृढ़ लक्ष्य है कि मुझे बाबा जैसा बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। इसलिए रोज बाबा के सामने बैठकर अपने आप को हम पक्का कराएं कि मुझे बाबा जैसा बनना ही है, क्योंकि बाबा ही सर्वश्रेष्ठ है। चाहे स्थिति के हिसाब से निराकार शिव बाबा और कर्म व्यवहार के हिसाब से ब्रह्मा बाबा, जो बाप दादा हमें मिले हैं वो सर्वश्रेष्ठ मिले हैं। इसलिए अब हमें बुद्धि या दृष्टि इधर उधर घुमाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने बाप दादा वो रोल मॉडल है, वो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है। तो अपने आप को हम समझाएं और गहराई से रियलाइज करें तो जरूर हम बन सकते हैं, क्योंकि जैसे ही बाबा ने आत्म बिंदी का तिलक हमें लगाया, अगर प्रैक्टिकल में ये बिंदी सदा अपने को लगाते हैं, स्मृति में रखते हैं, तो इस प्रथम बिंदी से ही मैंपन समाप्त हो जाता है और मैं के बदले हम ये भावना आ जाती है, मैं नहीं लेकिन हम सब, ये विशाल भावना हमारे में आती है। तो बेहद का स्वरूप बन जाता है, मैं कर रही हूं नहीं, हम कर रहे हैं। और ये सच्चाई है कि हम मिल करके ही अपने आप को भी पूर्ण बना सकते हैं, बाबा के कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। अभी भी संडे जो अव्यक्तवाणी रिवाइज हुई, अव्यक्त बाप दादा ने लास्ट में जो मुख्य शिक्षा दी वो यही दी कि सर्विस का अभिमान न आवे, ज्ञान का अभिमान न आवे, मैंपन न आवे। 2 फरवरी 1969 की मुरली में बाबा ने ये कहा। बाबा का अव्यक्त होना और हम बच्चों का सेवा की स्टेज पर आना, उस प्रारंभ में ही बाबा ने ये पाठ पक्का करा दिया और हम सब अनुभव करते हैं कि जब मैं आत्मा हूं ये स्मृति का तिलक हमें सदा लगा रहता है तो देह की आकर्षण से, चाहे वो स्वयं की देह हैं या कोई भी देहधारी की देह हैं, हम उस आकर्षण से मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पहला अभ्यास ही डिटैचमेंट सिखाता है, शरीर से अलग हूं तो न्यारा बनाता है और यही हमारी मुख्य साधना है, यही हमारा फाउंडेशन है, यही हमारा मुख्य पुरुषार्थ है कि हम निरंतर देह भान से न्यारे रहे। सुनने में ये पॉइंट बहुत साधारण लगती है लेकिन ये मूल और मुख्य बात है, इसलिए आपका अपना भी अनुभव होगा कि देहभान से न्यारे रहते हैं तो पुराने संस्कारों को भी एक्टिव होने की मार्जिन नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम देहभान से डिटैच है तो मन में जो संकल्पों का तूफान उठता है पुराने संस्कारों के कारण, उनको हम डिटैच होके ऑब्जर्व कर सकते हैं और जब हम डिटैच होके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें से पार होने की युक्ति मिल जाती है। अगर ये पाठ हमें पक्का रहे तो हम आपस में भी कभी साधारण नहीं हो जाएंगे। हमारा संबंध व्यवहार अलौकिक रहेगा क्योंकि हमें स्पष्ट है कि शरीर लौकिक है, आत्मा अलौकिक है, तो स्वाभाविक है कि देहभान में रहेंगे तो हम साधारण हो जाएंगे, हम आत्मस्मृति में रहेंगे तो हमारे में रूहानियत आएगी, अलौकिकता आएगी। तो आत्मस्मृति का तिलक लगने से अभिमान खत्म होता है और हम स्वमान आत्मसम्मान में स्थित हो जाते हैं। आज सारी दुनिया में जो बड़े बड़े संगठन हैं, कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, वो आकर यही बताते हैं कि सारे झगड़े टकराव का मूल कारण आई ईगो है और बाबा ने प्रथम लेसन में ही उसको खत्म कर दिया कि मैं आत्मा हूं और सभी आत्मा है तो अभिमान की बात ही नहीं है। जब सब आत्मा है तो अभिमान की बात ही नहीं, मैं ही कुछ हूं तो अभिमान आता है, पर हम सब आत्मा ही हैं तो अभिमान खत्म होता है और हमारा आत्म सम्मान जागृत होता है। तो जो कलह क्लेश है, अभिमान है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा बिंदी का जो बाबा ने तिलक लगाया तो इससे मेरापन खत्म होता है, क्योंकि हमें स्पष्ट है कि मालिक बाबा है, हम निमित्त है, मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान बाबा ने दिया है, दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है, सेवा बाबा की है, सेवा स्थान बाबा का है, बच्चे बाबा के हैं, कार्य बाबा का है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि कर्ता करने कराने वाला बाबा है अंदर से। हमें तो मौका मिला है निमित्त बनकर, योग्य बनकर करें और भाग्य बना ले। तो मेरापन समाप्त हो जाता है, ट्रस्टीशिप आ जाती है, हमें स्पष्ट रहता है कि मैं अपने आप को प्रत्यक्ष करने नहीं आई हूं, बाबा को प्रत्यक्ष करने आई। तो कितना भी कुछ प्रैक्टिकल कारोबार हम करेंगे तो भी हम उसमें फंसेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, क्योंकि स्मृति है कि बाबा करा रहे। और जब बाबा याद रहता है तो हम स्वयं हल्के हो जाते हैं, कितना भी कुछ करें भारी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी सर्व शक्तियां हमारे साथ है, वो स्वयं हमारे साथ है, तो हम लाइट हो जाते हैं, भारी नहीं होंगे। इसलिए दूसरा बिंदु भी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब कुछ तभी संभव है जब बाबा से योग लगाते हैं और आत्मा में शक्ति आती है। हर कार्य में दिव्यता भर जाती है, आत्मा का ये नेचर है, क्योंकि पूरे ड्रामा में आत्मा संबंधों से बंधी हुई है, इसलिए संबंधों में रहने का आत्मा को अभ्यास है। बाबा ने अपने आप के साथ जोड़कर हमारे उस नेचर को भी भरपूर अनुभव कराया, और अपने आप से बाबा ने जोड़ दिया तो अपने आप सबसे हम न्यारे हो गए। जैसे आप यज्ञ में देखो, बाबा ने शुरू में बाबा और मम्मा दोनों को हमारे सामने निमित्त बनाया कि ये हमारे अलौकिक माता पिता है। जब मम्मा अव्यक्त हुई तो बाबा ने कहा ये ही बड़ी मां है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने डायरेक्ट अपने आप पर जोड़ा कि शिव बाबा ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा सब कुछ है। तो कैसे लौकिक से अलौकिक बनाया और अलौकिक से बाबा ने पारलौकिक बनाया कि हम डायरेक्ट बाबा पर डिपेंडेंट है, इस दुनिया की कोई हस्ती पर नहीं। क्योंकि भक्ति में आत्मा को आदत थी कोई ना कोई मनुष्य गुरु पर आधारित रहने की। जैसे आप सुनते होंगे दुनिया में भी लोग सोच ही नहीं सकते, वो कहते हैं कि कोई गुरु तो जरूर चाहिए जो मार्ग बतावे। और आज हम बाबा के बच्चे हैं जो डायरेक्ट परमात्मा से शक्ति लेकर हरेक को अपने आप पर बाबा ने खड़ा कर दिया। भला हमारा संगठन है, हम एक दो की विशेषताओं का लाभ लेते हैं, एक दो के स्नेह शक्ति पालना से पलते हैं, लेकिन इंटरनली हरेक इंडिपेंडेंट है। क्योंकि डायरेक्टली हम परमात्मा पर डिपेंड है। तो सबसे निराधार बनाकर स्वयं में सक्षम बनाना, ये बाबा के साथ जुड़ने से हम हुए। और तीसरा बिंदु जो बाबा ने व्यवहारिक जीवन के लिए हमें दिया है वो ड्रामा का बिंदु। बाबा कहते हैं कर्म में पुरुषार्थ, कर्म के परिणाम पर प्रारब्ध ड्रामा। जब कर्म करें तो पूरी शक्ति और पूरे पुरुषार्थ के साथ करें, पर कर्म का परिणाम जो सामने आवे तो ड्रामा कहकर स्वीकार करें। क्योंकि कर्म के परिणाम में सिर्फ वर्तमान का पुरुषार्थ गिनती नहीं होता है, कर्म का रिजल्ट जो आएगा उसमें तो आगे पीछे का जो भी माइनस प्लस का हिसाब है वो मिलाकर के रिजल्ट आएगा। तो व्यर्थ को स्टॉप करने के लिए बाबा ने ड्रामा की बिंदी हमें दी है। भांत भांत के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं को हम समझ सके और ऊंची नजर से देख सके, टकराव से बच सके, उसके लिए बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। बाबा ने उस समय आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया जब हमें पुनः चढ़ती कला में जाना है। इसलिए भविष्य स्पष्ट है, वर्तमान हमारे हाथ में है, जो बीत गया वो ड्रामा बाबा ने कहकर हमारी बुद्धि को वर्तमान में स्थिर किया और भविष्य पर फोकस किया। इसलिए तीनों बिंदु हमारी आंतरिक स्थिति को ऊंचा उठाने वाले हैं। बाबा ऐसे ही रोज मुरली में ज्ञान रिवाइज नहीं करा रहे हैं, यही ज्ञान है, यही पॉइंट्स है जो हमारी हर समस्याओं का निवारण है, उसको प्रयोग में लाएंगे, अभ्यास में लाएंगे, तो हमें अनुभव होगा कि इससे हमारी स्थिति कैसे बनती जाती है। और जब अंदर से स्थिति महान बनेगी, ऊंची बनेगी, तो अपने आप आपके दिल से, क्योंकि दुआएं टॉपिक में है ना, तीन बिंदियों का तिलक और दुआएं, दुआएं ऐसे नहीं निकलती है, अंदर की ऊंचाई महानता चाहिए। जब हमारी स्थिति ऊंची और महान बन जाती है तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तो देने का पाठ शुरू होता है। अंदर की महानता है तो मन में शुभ भावनाएं रहती है। इसलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं कि पूर्वज और पूज्य का कर्तव्य ही है दुआएं देना, तो वो ऊंचाई हम स्वीकारें कि हम पूज्य आत्माएं हैं, सारी मानव जाति के आदि पूर्वज हैं। उस ऊंचाई में जब स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंतर्मन से, दिल से, क्योंकि अंदर विशालता आ जाती, उदारता आ जाती है। जगत पिता जगत माता समान स्थिति बन जाती है, ज्ञान की गहराई है, प्रेम की विशालता है, तो दुआएं दे सकते हैं। बाबा ने कहा न, देना है बस, ऑटोमेटिक मिलता है, क्योंकि जो देते हैं वही हमें मिलता है, ये संसार ड्रामा का नियम है। इस संसार कर्म क्षेत्र का नियम है, जो हम देंगे वो ही हम पाएंगे, अपने आप दुआएं मिलेगी। कोई शब्दों से कहने की बात नहीं, लेकिन सबकी आपके प्रति अमी नजर रहेगी। मीठी नजर रहेगी, कृपाकारी नजर रहेगी, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं है तो दूसरे में भी नेगेटिव का शमन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपके संदर्भ में वो उठ नहीं सकेगा। जैसे हम ऋषि मुनियों का सुनते हैं कि उनकी तपस्या के वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे कि हिंसक प्राणी भी पालतू प्राणी की तरह आकर शांत बैठ जाते थे, उनकी हिंसक वृत्ति का शमन हो जाता था। तो ये भी हम अनुभव करेंगे कि जब हम अंदर से ऊंच है, महान है, जैसे बाबा से पूछते थे ना कि बाबा को सब क्यों प्यार करते थे? क्योंकि बाबा सबको प्यार करता था। बाबा के दिल में सबके लिए प्यार था, जैसे दादी जी का अनुभव करते हम सबने किया कि बेहद का प्यार, निस्वार्थ प्यार। तो जब आप स्थिति में स्थित हो जाएंगे ना, तो फिर वो चीज हो जाएगी। क्योंकि बाबा का प्रैक्टिकल रोल हम देखते हैं, चाहे भगवान का, चाहे ब्रह्मा बाबा मम्मा का, चाहे दादियों का। हम तो मधुबन में देखते हैं, दादियां सदा ये कहती है, हमारा काम है प्यार देना, पालना करना। कोई कैसा भी है, सेवा कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसी भी कर रहा है, हम दाता के तरफ से निमित्त है। हमारा कार्य है प्यार देना, पालना करना। तो बाप समान आत्माएं, जैसे भगवान के लिए कहा जाता है कि गॉड नोज नो डिस्टेंस, भगवान कोई भेद नहीं जानता है। और ये हम प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं कि हम मानते हैं, नहीं मानते हैं, परिवर्तन करते हैं, नहीं करते हैं, सहयोग देते हैं या विघ्न लाते हैं। लेकिन बाबा का हम सबके प्रति समान प्यार है। तो हम भी आपस के हिसाब से ऊपर उठ जाएं। क्योंकि अब मैं अपने हिसाब किताब से यहां हूं ही नहीं, अब हम बाबा के तरफ से निमित्त बने हैं। हम यहां यज्ञ में, हम यहां सेंटर में, आप चाहे अपने घर में, लेकिन हम सब इस अलौकिक जन्म में अब जहां भी हैं, हम अपने हिसाब किताब से नहीं हैं, हम बाबा की तरफ से निमित्त है। और बाबा के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि मैं बाबा का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मेरा किसी से कोई हिसाब किताब नहीं, मुझे बाबा के तरफ से बिहेव करना है, तो हमारे में हिसाब किताब का नेचर नहीं आएगा कि देखो वो कैसा करता है तो मैं भी करूंगी ना। वो तो कभी हमें सहयोग नहीं देता है, तो हम क्यों उनकी पालना करेंगे, वो चीज आएगी ही नहीं। मुझे याद है एक बार दादी जी ने एक बड़े प्रोग्राम, मेले होते थे शुरू में, बड़े संगठन में काम होते थे, जैसे मेगा प्रोग्राम के टाइम करते हैं, ऐसे बड़े बड़े मेले के होते थे, और उसमें बहुत बड़े बड़े संगठन में सब काम करते थे। और स्वाभाविक ये फर्स्ट मेला दिल्ली रामलीला मैदान में हुआ था, और पूरे भारत भर के, क्योंकि उस समय तो पूरा भारत आया तब वो कार्य हुआ था, तो समझ सकते हैं जब इतना बड़ा संगठन मिलके काम करेगा तो स्वभाव, संस्कार, टकराव, सब बातें होंगी। तो दादी जी ने बहुत अच्छा क्लास कराया था कि आप अज्ञानियों को कहते हो कि ज्ञान में आ जाओ तो आपकी सब समस्याओं का हल हो जाएगा, आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। यही कहते हैं ना हम लोगों को कि भाई आप ज्ञान में आओ, आपके सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो दादी ने कहा कि आप अज्ञानियों को कहते हैं ज्ञानी बन जाओ तो आपकी सब समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो दादी ने कहा कि मैं ज्ञानियों को कहती हूं कि योगी बन जाओ तो आपके ब्राह्मण जीवन की सब समस्याएं खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब योगी आप बन जाते हैं तो इतना ऊंचा अतीन्द्रिय सुख, इतनी ऊंची स्थिति और अनुभूति होती है कि ये हल्की नीची छोटी मोटी बातों में फिर बुद्धि जाएगी ही नहीं। कोई मान दे या ना दे, हम अपने स्वमान से महान हैं। कोई सेवा का चांस दे या ना दे, हम अपनी स्थिति से, वाइब्रेशन से, शुभ भावना से कोई भी सेवा मिस कर ही नहीं सकते। बाबा ने बहुत विधियां बताई हैं, बहुत रीतियां बताई हैं। हम किसी भी तरीके से ऊंचे उठ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भाग्य बना सकते हैं। और हम जो कुछ सेवा सहयोग करते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ चाहिए थोड़ी। कोई इंसान से रिटर्न थोड़ी चाहिए। हमारा अच्छा किया हुआ कहीं जाता नहीं है, उसका रिटर्न ऑटोमेटिकली बाबा ड्रामा देता ही है। हम निर्संकल्प रहे, हमें सिर्फ अपनी ऊंचाई में, महानता में, दिव्यता में रहना है। तो स्वतः दुआएं मिलेगी, हम पात्र बन सकेंगे। तो जनवरी मास प्यारे बाप दादा से हम सब मिलेंगे। बाबा की हम बच्चों के प्रति जो ऊंची आश है, अब हम एक एक ब्राह्मण, क्योंकि बाबा ने ये 6 मास अक्टूबर से बाबा ने कहा कि ये 6 मास स्व सेवा के लिए देता। और स्व सेवा की डेफिनेशन भी बाबा ने दी है कि स्व सेवा अर्थात जो भी कमी कमजोरी है वो दे दो और बाप समान बन जाओ। स्वयं को चेक करना और कमी कमजोरी बाबा को देकर बाप समान बन जाना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि स्व के लिए बाबा ने दिया है। और ये इनडायरेक्टली हम सबको इशारा है कि आगे ऐसी परिस्थितियां आएगी कि हम स्व के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अभी किया हुआ पुरुषार्थ उस समय हमें काम आएगा। तो हम 3 मिनट मास्टर दाता की स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं के प्रति शुभ भावना, मैं जरूर बाप समान बनकर ही रहूंगी, ईश्वरीय परिवार के प्रति शुभ भावना कि ये सब ड्रामा की महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना है, जो अपने पवित्र जीवन से ईश्वरीय कार्य में मददगार है। ये महान आत्माओं का संगठन है, विश्व के प्रति शुभ भावना कि अब जल्दी ही विश्व स्वर्ग बन जाए, आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएं, हम वापस अपने घर पहुंच जाएं, तो 3 मिनट उस स्थिति में हम स्थित हो जाएंगे। ओम शांति।